आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शानासाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 131वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में पुत्रों का माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने के परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। आगे केरल राज्य के मल्लपुरम शहर, जो केरल के मध्य में बसा हुआ है, से 24 किलोमीटर दूर गांव कोड़नी में जन्मे मोहनन अपनी पत्नी के साथ रहते थे। यह कुल लगभग 200 वाली आबादी का गांव है, जिसमें 400 ट्विंस थे। ट्विंस होना इस गांव की खासियत थी। मुस्लिम बाहुल गांव था तथा इस गांव को भगवान का अपना घर के नाम से भी लोग जानते थे। क्योंकि मोहनन ने ग्रेजुएशन में हिंदी विषय लिया हुआ था, अतः पास होने पर उन्होंने गांव के ही प्राइवेट स्कूल में 8वीं कक्षा तक हिंदी विषय पढ़ाने पर नियुक्ति मिल गई। मल्लपुरम शहर से उनका विवाह भी हो गया, लेकिन संतान प्राप्ति हेतु उन्होंने मंदिर, पीर, दरगाह सब जगह शुद्धि करने के उपरांत लगभग 40 वर्ष की आयु में ट्विंस के माता पिता बनने का गौरव प्राप्त किया। समय सुखपूर्वक बीतता गया। मोहनन जी के घर जिन बच्चों को पास होना होता, वह ट्यूशन के लिए भी आते थे। ट्विंस में एक बच्चे का नाम रवि मोहनन तथा दूसरे का नाम मन मोहनन रखा गया। रवि मोहनन विद्या अध्ययन में कमज़ोर होने के कारण 10वीं पास कर किसी स्टोर में सेल्समैन के पद पर कार्य करने लगा। मनमोहन मोहनन तीव्र बुद्धि व परिश्रमी होने से 12th करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ और यथा प्रयास कर MBBS पास कर लिया। साथ में शाम को ट्यूशन कर धनुपार्जन भी कर रहा था। रवि मोहन की शादी के रिश्ते आने लगे थे, लेकिन उनकी शर्त होती कि घर का बंटवारा कर दो, जिससे लड़के का व्यक्तिगत स्टेटस दिखलाई पड़े। मोहनन ने अपनी जमीन जायदाद, सोना चांदी आदि दोनों बच्चों के बीच बांट दी और रवि मोहनन का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। लेकिन लगभग 6 माह बाद ही बहू ने देवर एवं पति को अपने काबू में कर सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। सास कुछ कहती तो बहू व दोनों बेटे उसे मारते एवं दो दो दिन तक कमरे में बंद रहने की सजा देते तथा ससुर को मार मार कर घर से निकल जाने को बाध्य करते थे। खाना भी दोनों समय नहीं मिलता था। कहते कि तालाब से मछलियाँ पकड़ कर लाओ, जो उन्हें आता ही नहीं था। बहू के बेकाबू में आकर साथ में मनमोहन तो उन दोनों को स्लो पॉइजन का इंजेक्शन भी देने लगा था। इस तरह माता पिता को कठोरतापूर्वक दोनों बेटे बहू सहित दुर्व्यवहार करने लगे थे। एक दिन जब मोहनन को मार मार कर घर से हमेशा की तरह निकाल दिया, तो वह बहुत मजबूर होकर पास के थाने पहुंच गई, जहां थाने की सीढ़ियां चढ़ते वक्त वह सीढ़ियों पर गिर पड़े। उन्हें गिरता देख एक सिपाही ने दौड़कर उन्हें उठाया तथा पूछा कि बाबा, ये तो थाना है, यहाँ किस लिए आए हो? प्रत्युत्तर में मोहनन ने कहा कि तुम्हारे SHO साहब से कुछ फरियाद करनी है। उन्हें लेकर सिपाही पास के SHO निवास पर ले गया। हटकर सैल्यूट देता हुआ SHO साहब से बोला कि बाबा आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। यद्यपि SHO अति आवश्यक कार्य से कहीं जा रहे थे, लेकिन बाबा की दुर्दशा देख उन्हें कुर्सी पर बैठा अर्दली द्वारा पानी पिलाने के बाद पूछा कि आप अपनी बात संक्षेप में बतला दें। मोहनन ने जब बताया कि मेरे दोनों ट्विंस बेटे मुझे मारते हैं, मारने के निशान दिखलाते हुए बतलाया तथा पत्नी भी अगर कुछ कहे तो कमरे में बंद कर देते हैं, उनके जुल्मों से आहत होकर थाने में प्रार्थना करने आया हूँ। उनकी शारीरिक हालत तथा चोटों का निशान देख SHO साहब एकदम क्रोधित हो सिपाहियों को आदेश दिया कि इनके घर से दोनों बेटों को तुरंत थाने लाकर 3rd degree टॉर्चर करो, तब तक मैं फील्ड वर्क निपटा कर आता हूँ और बाबा को ससम्मान चाय तथा खाने पीने की व्यवस्था करें। सिपाही दोनों बेटों को तुरंत पकड़कर थाने में ले आए। पिता को वहाँ देखकर अपनी आदत अनुसार लड़के बोले, अपने बाप से हमारी शिकायत करने आए हो यहाँ? यह सुनकर SHO ने दोनों बेटों के कपड़े उतरवा कर हाथ ऊपर करके बांधे, दोनों पैर बांधे और कोड़े लगवाने प्रारंभ कर दिए। पिटाई के कारण दोनों लड़के जोर जोर से रोने लगे तथा माफी की गुहार करने लगे। लड़कों की हालत देखकर पिता मोहनन ने SHO साहब के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला कि कृपया इन्हें छोड़ दें, मैं अपना दिया हुआ प्रार्थना पत्र वापस लिए लेता हूँ, मुझे इनकी पिटाई देखी नहीं जा रही। अब मारते इन्हें हैं और दर्द मुझे महसूस होता है, अब मैं और ज़्यादा दर्द सहन नहीं कर सकता। मोहनन की प्रार्थना पर SHO साहब ने उनकी पिटाई बंद करा दी तथा कहा कि आज मुझे ज्ञात हुआ कि पिता कैसा होता है, क्योंकि जब मैं मात्र 7 वर्ष का था तभी मेरे पिता का दुर्घटना में देहांत हो गया था, तो मैं केवल तुम्हारे पिता के कारण छोड़ रहा हूँ। उन लड़कों से लिखित में बयान लेकर उनके घर में अपने खर्चे से CCTV कैमरे भी लगवा दिए तथा फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग कह छोड़ दिया। थाने की पिटाई पर CCTV लगे होने के वो परिवार एकदम सुधर गया, लेकिन कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। रवि मोहन को 1 वर्ष के अंतराल में हार्ट अटैक हो जाने से देहांत हो गया। कोई संतान न होने से उसकी पत्नी अपने पीर वापस चली गई और डॉक्टर मनमोहन को ब्लड कैंसर हो गया, जिसको वो परिवार से छुपाता रहा। सोचा माँ बाप मेरे लिए ATM कार्ड बन सकते हैं, तो मैं उनके लिए आधार कार्ड तो बन ही सकता हूँ। अतः एक दिन डॉक्टर बेटे ने माता पिता से कहा कि मैं अमेरिका 6 माह के लिए अस्पताल की ओर से जा रहा हूँ, यहाँ आप दोनों की देखभाल को कोई न होने से वृद्धाश्रम शिफ्ट कर रहा हूँ, बस कुछ दिन की बात है, कहकर दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ गया। दोनों न चाहते हुए भी आश्रम में रहने लगे। 6 माह बाद पिता ने जब डॉक्टर बेटे को फ़ोन लगाया तो उसने कहा, अभी मैं अमेरिका में ही हूँ। आश्रम के अन्य लोगों ने कहा कि वह यहीं कहीं किसी के साथ रह रहा होगा, आप दोनों से पीछे छुड़ाने की बहाना कर रहा होगा। इस तरह 6 माह बाद माता पिता जब बेटे को फ़ोन करते तो यही सुनने को मिलता कि अभी अमेरिका में ही हूँ। लगभग 4 वर्ष बाद पुत्र को देखने की अभिलाषा लिए माता पिता का 15 दिन के अंतराल में देहांत हो गया। उनकी दाह संस्कार की तैयारी आश्रम में ही निपटाने की हो रही थी, तब आश्रम वासियों ने प्रबंधक महोदय से कहा कि अब तो इनके डॉक्टर बेटे को दाह संस्कार में शामिल होने को बुला लेते। इसके प्रत्युत्तर में प्रबंधक महोदय ने बताया कि इनका बेटा तो 3 वर्ष पहले ही ब्लड कैंसर से मर चुका है। लोगों ने पूछा, फिर आप हर 6 माह बाद इनकी किससे बात करा रहे थे? तब प्रबंधक महोदय ने बताया कि इनके बेटे ने अपने मोबाइल पर स्वयं की आवाज़ रिकॉर्ड कर आश्रम में जमा कर दी थी तथा कहा कि मेरे माता पिता मेरी मृत्यु का आघात सहन नहीं कर पाएंगे और कैंसर की लास्ट स्टेज होने के कारण अब मेरे मुंह पर मसूड़ों से खून आना प्रारंभ होने वाला है, इसलिए मैंने इनको वृद्धाश्रम आपकी निगरानी में छोड़ा हुआ है। इनकी मृत्यु उपरांत सारी संपत्ति, मकान आदि सब आश्रम के नाम ट्रांसफ़र कर दी गई है। मित्रों, पुनः सोचना घर को स्वर्ग बनाने के लिए आवश्यक है। बड़ों का आदरपूर्वक सम्मान, आपस में प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, एक दूसरे को समझने की भावना, कर्तव्यपरायणता, ये सब आत्मगुणों से घर का गुलदस्ता सजा रहेगा। तब दुनिया की कोई ताकत नहीं जो घर को नरक बना दे। भाइयों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट्स, लाइक दें व फॉलो भी। धन्यवाद।